आज काचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताई गौर प्रेमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी में होगा क्या? इतना आवाज क्यों कर रहा है संजय जी? तो घूमता है लेकिन क्लीन करना पड़ेगा। कहाँ है श्याम सुंदर ब्रो? श्याम सुंदर ब्रो थोड़ा क्लीन करवा देना बाद में फैन। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6 अध्याय शीर्षक पूतनावध श्लोक संख्या 9। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अति वाम चेष्टिताम, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अति वाम चेष्टिताम, विक्षांतरा कोश परिच्छ दासिवत, विक्षांतरा कोश परिच दासिवत, वर स्त्रियं तत प्रभया च धर्तिष्ठे, वर स्त्रियं तत प्रभया च धर्षिते, निरीक्षमाणे जननी ही अतिशताम्, निरीक्षमाणे जननी ही अतिस्थताम्, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अति वाम चेष्टितम्, विक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत्, वर स्त्रियं तत् प्रभया च धर्षिते, निरीक्षमाणे जननी ही अतिस्थताम्। पढ़िए। शब्दार्थ ताम उस पूतना राक्षसी को तीक्ष्ण चित्ताम बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत पाषाण हृदय वाली, अति वाम चेष्टिताम, यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी, विक्ष अंतरा, कमरे के भीतर उसे देखकर, कोश परिच्छद अस्तिवत, मुलायम मयान के भीतर तेज तलवार की तरह, वर स्त्रियम, सुंदर स्त्री के, तत्प्रभया, उसके प्रभाव से, च भी, धर्षिते, अभिभूत, विवल, निरीक्षमाणे, देख रही थी, जननी, दोनों माताएं, ही निश्चय ही, अतिष्ठताम, वे मौन रह गई। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तात्पर्य, यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया, तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर, माया मोहित, यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर क्या है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, वे माया मोहित कहलाते हैं। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमं वयम् न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दराशया ये बहिरर्थमानिन। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित न थीं, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा वे मुग्ध कर दी गईं। योग माया का कार्य ही है ऐसा माया मोह। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सत्य देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पे चल रहा है और बहुत शिक्षा प्रदान करने वाला है ये प्रसंग। भागवतम के तो हर श्लोक से भगवान का गुणगान और शिक्षा मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे स्पेशली पूतना वध में श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि पूतना कौन है। पूतना एक मिथ्या गुरु है जो हमें मार्ग से भटकाता है। तो कौन कौन दो तरह के मिथ्या गुरु होते हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर विस्तार में बताते हैं और भक्ति सिद्धांत जी बहुत लंबा परपट देते हैं। दो तरह के मिथ्या गुरु होते हैं, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। तो अंदर वाला मिथ्या गुरु तो हम सब जानते हैं, वो है मन। कैसे पूतना आई ब्रज में और सारे ब्रजवासियों को कृष्ण से अलग कर रही है। तो मिथ्या गुरु का काम क्या है? जीवात्मा को भगवान से अलग करना। गुरु का काम क्या है? साथ लाना। जैसे साधु का परिभाषा क्या होता है? साधु मतलब साधुनोति साधयति च कृष्ण प्रेम इति साधु। साधु मतलब साधुनोति, साधुनोति मतलब जो साधन करता है, साधनोति। साधयति जो दूसरे को साधना करवाता है, खुद भी करता है दूसरे को भी कराता है। किस चीज के लिए साधना कराता है? कृष्ण प्रेम। और किसी भी कारण के लिए आप साधना कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी। आपका पूरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। श्री भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं ना, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। कृष्ण के लिए ही अखिल मतलब सारी चेष्टा मतलब मेहनत करो। जो भी हम कर्म करें मेहनत करें वो किसके लिए करना है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए। तो ये ढोंगी साधु क्या करते हैं? जीवात्मा को भगवान से दूर करता है। सिर्फ जीवात्मा को ही नहीं, लक्ष्मी को भी दूर करना चाहता है, जैसे रावण। तो ये क्या करते हैं लोग? मिथ्या गुरु मन, पहले मन का देखते हैं। आपको कृष्ण से किस चीज से जोड़ा जा सकता है? साधना से। साधना में हमारे आचार्यों ने बहुत डिटेल में बताया है, भक्ति के 64 अंग हैं, 9 विधा भक्ति है। ये सब करने से हम कृष्ण की ओर जाते हैं। तो मन क्या करेगा? ये नहीं करने देगा। श्रवण नहीं करो, कीर्तन मत करो, विष्णु स्मरण मत करो। तो मन का काम ही है आपको दूर करना। क्यों? क्योंकि मन को शासन पसंद नहीं है और आप शासन करा रहे हो मन को आचार्यों के वचनों द्वारा, तो मन को पसंद नहीं। इतने जन्मों से अनादि काल से आपने मन को राजा बना के रखा है, अभी उसको बोलते हो गुलाम बन जाओ? इतना आसानी से थोड़ी बनेगा। वो भी वो राजा की गद्दी छोड़ने से पहले बहुत लड़ाई करना पड़ेगा आपको। मन एक ऐसा आतंकवादी है जिसने आपके ऊपर कब्जा करके रखा है। अब आप चाहते हो शांति से जीना, उसके लिए तो आतंकवादी को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो भी इतना आसानी से जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। भगवान चाहते थे युधिष्ठिर राजा बने, दुर्योधन नहीं बनने दे रहा था, हट नहीं रहा था, तो भगवान ने क्या कराया? युद्ध कराया। तो युद्ध हमको करना पड़ेगा, और ये सब आयुध चैतन्य महाप्रभु अपने आयुधों के साथ आए हैं। ये सब क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण कीर्तन, ये सब हथियार हैं हमारे। महाराज परीक्षित ने कली को दंड दिया, एक्चुअली माफ कर दिया, दंड देने वाले थे लेकिन माफ कर दिया, ठीक है, कली शरण में आ गया। कली पूछता है तो प्रभु मैं कहां जाऊं? बोले तुम वहां जाओ जहां चार नियम टूटते हैं। तो कली बोला प्रभु आपके राज्य में ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां चार नियम टूटते हो। तो बोला ठीक है, जहां पे सोना पैसा एकत्रित हो रहा है, जो भगवान की सेवा में नहीं यूज हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, वहां पे जाके बैठो। यानी कहीं पे भी कोई भी आपके पास रिसोर्सेस है वो जमा हो रहा है और कृष्ण के सेवा में प्रयोग में नहीं आ रहा है, तो वहां माया बैठेगी। सिर्फ पैसा नहीं, एक हो गया पैसा, इसीलिए जहां पे पैसा होता है अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं हो तो कलह होता है, उस घर में क्लेश होता है, क्योंकि कली घुसती है ना, कली उसमें प्रवेश कर जाता है। दूसरा, अगर आपके पास शरीर में बल है और आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हो, तो फिर माया वहां पे भी एंट्री करेगा। अगर आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान लिया लेकिन उसको प्रचार में नहीं लगा रहे हो, बैठ गए हो, तो वो ज्ञान भी आपके ही विरुद्ध काम करेगा। तो महाराज परीक्षित ने कली को ये जगह दिया और कहा कली को कि लेकिन सुन लो तुम एक बात, तुमको रहने नहीं दूंगा इस संसार में, मार भी नहीं रहे और छोड़ भी नहीं रहे, न जीने दे रहे हैं उसको न मरने दे रहे हैं, बीच में अटका दिया। देखो महाराज परीक्षित, एक शुद्ध भक्त का पावर देखो, वो कली को अटका के रखा है, जिस कली ने हम सबको अटका के रखा है, एक शुद्ध भक्त तो कली को बीच में अटका दिया, न इधर जाने का न उधर, जैसे नीलकंठ महादेव विष को न बाहर निकलने देते हैं न अंदर जाने देते हैं, यहीं बैठा रहे, रोक दिया वहीं पे। तो कैसे करेंगे महाराज? कली पुरुष पूछता है कैसे करेंगे आप, मेरे को एंट्री नहीं देंगे, कैसा करेंगे? तो परीक्षित महाराज तो नहीं दिए, तो फिर श्रृंगी के थ्रू अंदर घुसा, श्राप दिलवा दिया परीक्षित महाराज को। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं पूरे संसार में हरिनाम कराऊंगा, जहां हरिनाम होगा कली वहां आ नहीं सकता। अभी परीक्षित महाराज डरेंगे, पूतना का रूप देख के जब सुनते हैं पूतना राक्षसी आ रही, परीक्षित महाराज कांपने लग जाते हैं कि कृष्ण को मार न दे। ये प्रेम देखिए भक्तों का, अरे कृष्ण लीला करके चले गए, आपको भी बचा दिया, ये तो फ्लैश में चल रहा, पीछे में चल रहा है, हम लोग फ्लैशबैक चल रहा है, लेकिन इतना प्रेम है भक्तों का कि वो बोले नहीं नहीं नहीं। तब तो ये कुछ श्लोकों पहले जो परीक्षित महाराज बताते हैं, चौथे या तीसरे श्लोक में, जय श्री श्री राधा राज बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताय की, तो कुछ श्लोक पहले परीक्षित महाराज जब घबरा जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, जहां पे भगवान का नाम मात्र आ जाए वहां ये राक्षस भूत प्रेत और खेचरी और जितने भी हैं कुष्मांड वगैरह और नहीं आ सकते तो फिर जहां भगवान सोए मैं वहां क्या कहना, तो आप घबराइए मत। इतने घबरा गए थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज कली को बोलते हैं कि हरिनाम कराऊंगा, तो कली जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कोई बड़ा मजाक कर दिया। रोड पे चलते चलते कोई व्यक्ति बोलेगा, है ना, मैं भक्तों के सामने तो भक्तों को हंसी आती है, लेकिन हम लोग तो दबाना पड़ता है। कोई आपको बोलेगा मैं विष्णु का अवतार हूं, तो आपको कितना हंसी आएगा। ऐसा ही कली हंसने लग गया। तो परीक्षित महाराज, मजाक कर रहा हूं क्या, हाँ राजा के सामने ऐसा, अभी तुम्हारा गला काटने वाला था, माफ किया, ऐसा हंसते हो। बोले क्यों हंस रहा है। खली बोलता है, महाराज आप तो हरिनाम करवाओगे भक्तों से, सभी प्रजा से हरिनाम करा के भक्त बना के भगवत धाम भेजोगे, लेकिन मैं हरिनाम करने दूंगा तब ना, मैं तो बीच में ही एंट्री मार दूंगा। सोचिए, वही कर रहा है, जब कहां करने दे रहा कली हमको। तो मन क्या करेगा, ये कली मन में घुसा हुआ है, तो मन क्या करेगा, आपको दूर करेगा साधना से। और दूसरा जो मिथ्या गुरु होता है, वो बाहर जो संसार में बहुत गुरु हैं, और ये भारत देश तो ऐसा है कि गली नुक्कड़ पे भगवान के अवतार मिलते रहते हैं ढोंगी लोग। गुरु का क्या कहना, गुरु तो घर घर में है, हर व्यक्ति गुरु बना हुआ है भारत में। आप गीता वितरण करने जाओ, इतने गुरु मिलेंगे, हाँ आप सोचेंगे इतने गुरु हैं ब्रह्मांड में, तो अभी तक ब्रह्मांड तो पूरा वैकुंठ चला जाना चाहिए, इतने गुरु मिलते हैं। हमको पूरे 700 श्लोक याद है, हमको क्या गीता दे रहे हो। हम पूरी गीता जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं। एक जन बोला पूरा गीता पढ़ाऊं मैं बचपन से, हमको क्या सिखा रहे हो, 5 बार पढ़ाऊं। मतलब फिर क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ गए। अरे समझ में क्या आया वो तो बताइए, एक लाइन में कुछ तो बताइए, क्या गीता में समझ में आया। चुप, पढ़ा है तो कुछ तो समझ में आया ना, क्यों पढ़ा, चुप बैठा था। अब ट्रेन में थे, बहुत सारी पब्लिक थी, बेचारे का इंसल्ट हम नहीं करना चाहते थे। मैं बोला देखो ये गीता का श्लोक खोलो, यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, कि जो मेरा अर्जुन तुम पूरी तरह शरणागत हो जाओगे मैं शुद्ध कर दूंगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रचार करो, कि जो ये गीता का प्रचार करता है उससे बड़ा जो है मेरा सेवक कोई नहीं हुआ, वही सबसे बड़ा है। तो ये गीता का कंक्लूजन है, समझ में आया, हाँ तो तुम प्रचार किया, आप 5 बार गीता पढ़ा, प्रचार किया आप, तो करो। कैसे करूं, अभी तक तो गुरु बना घूम रहा था, एक क्वेश्चन में तो गुरु का पंक्चर हो गया टायर, कैसे कैसे करूं प्रचार। मैं गीता बांट रहा था अकेले, उसको 5 गीता दिया, मैं सोचा तब तक बाकी 6-7 भक्त यहाँ लोग बैठे हैं, इनको प्रचार करता हूँ, ये लो 5 गीता, जाओ ये बोगी में पूरा घूमो बेच के आओ। गया बेचारा, पूछा दो तीन लोगों से पूछा, आया वापस 10 मिनट बाद, क्या हुआ, एक भी गीता नहीं गया। तो फिर अभी गीता समझे नहीं हो ना, प्रचार करे तभी तो गीता समझे हो, नहीं तो क्या समझे हो। तो इसीलिए पढ़ो गीता, है ना, गीता घर में बोला है, मैं बोला पढ़ो अभी। तो ऐसे बहुत मिलेंगे, हमको 700 श्लोक याद है, बताइए प्रभु जी आपको कितना याद है। हम बोले हमको 7-8 श्लोक याद है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, श्लोक याद करने के बाद कर क्या रहे हो आप, कुछ कर तो नहीं रहे ना। तो ये ऐसे बहुत मिलेंगे, और इसी कैटेगरी में श्री भक्तिनाथ ठाकुर रखते हैं हमारे घर वालों को और रिश्तेदारों को। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए हैं, 6 दिन के पूतना आ गए मारने के लिए, सोचिए आगे से आई थी, कंस विचार कर रहा था असुरों के साथ बैठ के, क्या करें क्या करें, पूतना आगे से आ गए, मैं हूं ना महाराज, आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी स्त्री का रूप लेके बच्चों को दूध पिला पिला के मार दूंगी, साइलेंट किलर, ऐसा उसका भाव था। तो जन्म हुआ ही था कृष्ण का और मारने आ गई, तो कई बार हम जब नया नया अभी एक माला चालू भी नहीं किया है, तुरंत घर वाले रिश्तेदार दोस्त यार सब पकड़ लेते हैं, नहीं करने का, हरे कृष्ण, तुरंत आपको दूर करेंगे। अगर नहीं दूर कर रहे हैं तो वो असली गुरु है, अगर आपको दूर कर रहे हैं तो फिर वो पूतना के अवतार है। तो ये भी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर हमें समझाते हैं। अस संसार में देखते ही है ना, कहते हैं ना भक्त लोग कि विदेशों में भक्ति मुश्किल है क्योंकि महापाप है, और भारत में भक्ति मुश्किल है क्योंकि माँ बाप है। वहां महापाप करने नहीं देता, यहां माँ बाप करने नहीं देते, तो कली तो घुस गया है, किधर जाओगे, हर जगह घुसा है कली। ये तो प्रभुपाद जी की अद्भुत कृपा और अद्भुत शक्ति है। यहीं बंबई में एक भक्त ने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी मंदिर में कितना कली है। भक्त लोग ये वो कंप्लेंट करने लगा, प्रभुपाद बोले मंदिर में कली है वो कोई बड़ी बात है क्या, उसमें आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ये है कि कली के राज्य में हमने मंदिर खड़ा कर दिया। पूरा कलयुग फैला हुआ है, घोर अंधेरा, उसमें प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया। अभी मंगलवार को आ रहा है ना, 14 तारीख को इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे, जिस दिन इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन किया था श्री प्रभुपाद ने। तो पूतना ऐसी है, तो यहां पे आई। अब पिछले श्लोक में जो शनिवार को हुआ था तो उसमें हरा प्रभु ने ये पॉइंट नहीं कवर किया, दूसरे पॉइंट कवर, कि भगवान ने आंख क्यों बंद की। पिछले श्लोक में आता है कि भगवान ने आंख बंद क्यों की, तो आचार्यों ने अलग अलग कारण दिए हैं भगवान के आंख बंद करने का। एक तो भगवान सोचते हैं पूतना आई है मां बन के, लेकिन उसका मन देखो, आज के श्लोक में ना, पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर तथा किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। माता के रूप में आई है, इसको क्या बोलते हैं, मीठी छुरी, मीठी छुरी बोलते हैं ना, कैसा एकदम मीठा मीठा रूप लेके। और सुखदेव गोस्वामी दो श्लोक पहले बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं पूतना का, किसी असुर का वर्णन किए क्या सुखदेव गोस्वामी, इसका क्यों कर रहे पूतना का। एक कारण है, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं अभी 2-3 श्लोक में क्या होगा, पूतना शुद्ध भक्त बन जाएगी, अब भी बनेगी, बस कृष्ण को उठाएगी, कृष्ण दूध पी लेंगे, फिर जहर, फिर प्राण खत्म, और फिर माँ का गति दे देंगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पूतना के वर्णन कर रहे हैं इतना सुंदरता का, इतना डिटेल में जाके। तो आई तो है मां का रूप लेके, लेकिन अंदर क्या है, जहर भरा हुआ है इसके हृदय में। तो कृष्ण ने बोला मैं नहीं देखना चाहता ऐसा व्यक्ति को, यानी कृष्ण जो है वो मिथ्याचारियों को पसंद नहीं करते, ढोंगियों को पसंद नहीं करते। यहां से क्लियर हो गया, जितने भी मिथ्याचारी बाहर घूम रहे हैं कृष्ण इनको देखना नहीं चाहते, तो फिर कैसे उनका उद्धार होगा। जब वैष्णव जाएंगे उनको प्रचार करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, हरिनाम प्रचार, हरिनाम उच्चारण करेंगे, बाहर जाके कीर्तन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, इनको समझाएंगे, तब इनका उद्धार होगा। दूसरा कारण बोलते हैं, भगवान सोचते हैं मैं आया हूं इधर दूध दही माखन खाने ब्रज में, अभी चालू भी नहीं किया ये आ गई जहर लेके, ये कोई बात है, अरे मैं आया हूं वैकुंठ से इधर दूध पीऊंगा और माखन खाऊंगा, चोरी भी करूंगा, दही खाऊंगा, जहर लेके आ गई, क्या करें। तो भगवान सोचते हैं जहर पीना मेरा काम नहीं है, जहर पीना किसका काम है, शिव जी का काम है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं। इसीलिए जब समुद्र मंथन लीला में जहर निकला तो भगवान तो वहीं थे ना, भगवान अजीत वहीं बैठे थे, जब जहर निकला सारे देवता और असुरों में खलबली मच गई, तो सब भगवान के पास आए गए, भगवान की तरफ देखे, भगवान बोले चलो चलो भागो इधर से, भागो जल्दी 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 भागो जल्दी भागो। अब देवता बोले अरे भगवान ही भाग रहे तो हमको कौन बचाएगा, बोले चलो चलो महादेव बचाएंगे सबको। तो लोग सोचते हैं महादेव बड़े हैं, अरे क्यों बचाएंगे वो भी तो सोचो, ये उनका डिपार्टमेंट। भगवान बोलते हैं क्या भगवान विष खत्म नहीं कर सकते क्या? बट भगवान अपने भक्तों का नाम बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए तो नीलकंठ महादेव नाम फेमस हुआ ना। महादेव का दया को दिखाया भगवान कृष्ण ने। तो आंख बंद करके मान लो मेडिटेट करते हैं कि शिवजी कैलाश छोड़िए और आ जाइए, यहाँ पे आपके लिए खाने का प्रबंध किया गया है, इनविटेशन दिए उनको। कृष्ण के अंदर तो सारे अवतार सारी सृष्टि है, तो महादेव ने शिवजी ने जहर पिया और कृष्ण पूतना को मारे भी नहीं। एक्चुअली कृष्ण ने एक भी असुर को नहीं मारा। भगवान के अवतार वासुदेव जो कि भगवान के अंदर ही हैं, उन्होंने मारा। ये डिटेल है। तो इसीलिए बोले मैं आंख बंद करके शिवजी को बुलाता हूं। फिर कृष्ण क्यों नहीं आंख खोल रहे, वो सोचे अभी पूतना को मारने वाला हूं मैं, जब मारूंगा इसको, इसका जब प्राण को पीऊंगा तो ये छटपटाएगी। अरे बेचारी स्त्री छटपटाएगी, मेरे को देख के अच्छा नहीं लगेगा, मां बन के आई है उसका छटपटाना मैं देख नहीं पाऊंगा, तो आंख बंद कर लेता हूं। ये भी एक कारण। फिर बोलते हैं कि ये जन्म में तो पूतना ने बालक हातिनी सिर्फ बच्चों को मारा है, बालक हातिनी स्पेशल, इसका स्पेशलाइज्ड कोर्स था ये, इसने पीएचडी किया था स्पेशली बच्चों को मारने में, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बालक हातिनी। तो इस जन्म में तो भगवान बोलते हैं इसने कुछ किया नहीं है, लेकिन उद्धार तो करना, भाई है मेरे पास तो उद्धार तो करना है ना। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास दर्शन लेने आता है, भगवान को देता है 100 रुपए 1000 रुपए 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए जितना भी देगा, भगवान आंख बंद करते हैं। क्यों? ये 100 रुपए मेरे को दिया लेकिन इसका जेब में तो ज्यादा पड़ा हुआ है। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हो कि कितना रखे हो अपने पास। हा? कोई बोलेगा अरे बड़ा लालची है, भगवान सब कुछ लेना चाहते हैं आपका, क्योंकि आप अगर 1,00,000 रुपए घर में रख के 100 रुपए दे रहे हो भगवान को, तो आपका मन तो अभी भी 1,00,000 रुपए में ही है ना, तो मन कैसे लेंगे भगवान? तो भगवान वो 1,00,000 रुपए ले लेंगे तो मन भी अपने आप लग जाएगा, इसीलिए भगवान कई बार भक्तों का सब कुछ ले लेते हैं कि मन लग जाए वहां पे। तो सोचते हैं चलो आंख बंद करके सोचता हूं कि इसके पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है क्या, उद्धार करने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे भगवान तो भेदभाव करते हैं, हाँ? भगवान भेदभाव कर दिए, पूतना कुछ भी, पूतना आसुरी थी, राक्षसी थी, बालक हातिनी थी, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया फिर भी उसका उद्धार कर दिया, तो भगवान के ऊपर क्या हो जाता, दोष लग जाता। तो भगवान सोचे कि कुछ पुण्य तो होगा इसका, ढूंढते हैं, बाद में कोर्ट में जब केस आएगा तो बताना पड़ेगा ना क्यों उद्धार किया। भगवान किसी का उद्धार करते हैं तो भी तकलीफ है, किसी को दंड देते हैं तो भी तकलीफ है। संसार के अज्ञानी लोग हमेशा दोष निकालते हैं। मान लो उनको सेवा दिया गया है, हिरण्यकश्यपु द्वारा सेवा दिया गया है, तुम भगवान में दोष निकालो, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं। फिर सोचते हैं भगवान कि मैं तो सिर्फ अपना उद्धार करने नहीं आया हूं ना, मैं तो सारे संसार का उद्धार करने और स्पेशली ब्रजवासियों का रक्षा करना मेरा धर्म है। तो आंख बंद करके सोचता हूं कि बच्चे कहां कहां पे हैं और जिनकी मुझे रक्षा करनी है, तो आंख बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। फिर आंख बंद हो गई क्योंकि भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी जीवात्मा जब वैकुंठ जाता है तो या तो सूर्य मार्ग से जाता है या तो चंद्र मार्ग से जाता है। यही मार्ग से जाना पड़ता सबको। तो सूर्य और चंद्र अपना रास्ता बंद कर दिए। सूर्य चंद्र ने बोला हम तो गेट बंद कर देंगे, भगवान अभी इसको गोलोक भेजने वाले, हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, राक्षसी है, भगवान चाहे तो किसी और रास्ते से भेज दें। ये भाव है भक्तों का, तो इसीलिए भी आंखें बंद हो गई। फिर कहते हैं अभी निमि महाराज जो हैं वो कहां बैठते हैं, आंखों की पलक पे बैठते हैं, वो उनका स्थान है। तो बंद कर दिए, ओ बोलते हैं प्रभु तनिक सोचिए तो सही, आप आंख बंद करके तो देखिए, आंख खोल के देखेंगे तो राक्षसी दिखेगी आपको, आंख बंद करके देखो कहीं तो कुछ अच्छा किया होगा ना, बंद कर दो आंख। तो इसलिए है निमि महाराज ने इनका आंख बंद कर दिया। फिर पूतना जो है एक और कारण है, पूतना जो है वो अज्ञान है, अविद्या है, पूतना अज्ञान अविद्या है, वो है ना, कृष्ण सूर्य समा माया हाया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। अगर कृष्ण आंख खोल देंगे तो उजाला हो जाएगा, तो ये अज्ञानता वहां रह नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी, भाग जाएगी, फिर भगवान का वो वचन गलत हो जाएगा ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम में आया वापस नहीं जाएगा, एक भी असुर को वापस नहीं जाने दिए, कालिया को शुद्ध किए, शुद्ध करके भेजे, बाकी किसी असुर को ब्रज में आया और वापस गया ऐसा हुआ ही नहीं, क्यों भगवान स्वयं बोलते हैं जो मेरे धाम में आ गया वो कभी वापस नहीं जाएगा, वहीं खत्म किए, तो भाग जाएगी, फिर इसका उद्धार नहीं हो पाएगा, इसीलिए आंख बंद कर दिए। भगवान ने सोचा, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के हाव भाव जो है ना उसकी शक्ति उसकी आंखों से दिखती है, आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, बहुत कुछ आंखों से कहा जा सकता है, बहुत कुछ आंखों से समझा जा सकती है, इसकी आंखें देख के आप समझ सकते हो कि उसका भाव क्या है, उसका कितना शक्ति है। तो भगवान बोले अगर मैं आंख खुला रखूंगा और मेरी अनंत शक्ति में से थोड़ा सा भी अगर पूतना देख लेगी तो घबरा जाएगी बेचारी, इसलिए बंद कर देते, उसको डराना नहीं है। कितना अच्छा भाव है, भगवान बोलते इसको डराना नहीं है। एक और कारण बताते हैं कि हृदय में बड़ा क्रूर भाव लेके आई, ऐसे क्रूर व्यक्तियों को नहीं देखूंगा मैं। तो ऐसे अलग अलग भक्तों ने अलग अलग कारण बताए हैं भगवान ने क्यों आंख बंद किया। फिर भगवान ने आंख बंद किया, इधर पूतना घर में घुस रही है, ब्रजवासी जो थे सारे पुरुष हो तो मोहित हो गए, पूतना की सुंदरता पढ़ेंगे तो मोहित हो जाएंगे, इतना इतनी सुंदर बन के आई थी, हाथ में कमल भी लाई थी जैसे लक्ष्मी जी लेके चलती हैं, और स्त्रियां लेके आ रही हैं, आइए आइए नंदलाल इधर है इसको आशीर्वाद दीजिए, और यशोदा माता सोच ही रही थी कि ये तो कोई देवी है, लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आई है, ये लक्ष्मी मान रही थी, ये तो योग माया शक्ति ने ब्रजवासियों को ढक दिया, नहीं तो अगर देखा जाए तो भगवान के नित्य पार्षद भी धोखा खा जाते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। अगासुर के मुख में प्रवेश किए ग्वाल बाल, धोखा खा गए। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद जी बताएंगे सुंदरता को लेके। तो आके यशोदा सोचती है कि अगर ये लक्ष्मी है, देवी है स्वर्ग की, या तो लक्ष्मी स्वयं है, ये सिर्फ दृष्टिपात कर देगी मेरा पुत्र के ऊपर तो उसका जो भला हो जाएगा, और अगर छू देगी तो बा क्या कहना, और अगर दूध पिला दे तो आई है उसलिए। तो यशोदा माता सोच ही रही है, होता है ना हम लोग कुछ सोचते हैं वो हो जाता है, अरे एकदम मैच हो जाता है, तो ये आई और सीधा कमरे में घुस गई, और यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकी उनको, पूतना को रोक नहीं पाई, मोहित हो गई, माया मोहित, लेकिन ये योग माया है, भगवान का लीला को बढ़ाने के लिए। और बच्चे को उठाई, अब देख भी ली तो यशोदा तो खुश। कई बार माताएं, ये प्रेम होता है माताओं का, बच्चे के भले के लिए जो करना पड़े ना, कोई बोल देगा अरे तुम्हारा बच्चा हुआ है ना, ये इधर एक बाबा रहता है, उसका दृष्टि पड़ेगा ना, बच्चा स्वस्थ रहेगा। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, अच्छा ये इधर एक बाबा बैठा है, ये कोई भभूति देगा, अपने बच्चे के सर पे लगा दो, बच्चा स्वस्थ रहेगा, ओके चलो चलो चलो। और बाबा लोग इसका अच्छा फायदा उठाते हैं, भारत में सब ऐसे ही है। तो फिर पूतना गई अंदर, उठा ली बच्चे को, यशोदा माता और खुश हो गई, रोहिणी माता खुश, तो बहुत अच्छी बात है, और उठा के लाड़ प्यार कर रही है। अब कृष्ण सोए नहीं है, कृष्ण सोए नहीं, वो पूतना समझ गई, आंख बंद किए हैं वो अलग बात है, लेकिन पूतना समझ गई कि कृष्ण सोए नहीं है। मतलब जाग, क्योंकि सोए होते तो पूतना उठाती, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला नहीं कि पूतना ने कृष्ण को जगाया, है ना, कृष्ण तो जागे रहते हैं, सोते तो हम हैं। तो फिर उठा के उसको थोड़ा सा लाड़ प्यार कर रही है ना, बच्चे को उठा के थोड़ा ऐसे ऐसे हिला रही गोद में। अब देखिए उसका भाव देख के कितना हिम्मत है पूतना का। अगर चोर डाकू को हिम्मत नहीं होगा तो नहीं जा सकता चोरी करने। कई बार संसार में देखा गया जो गलत करते हैं आदमी, उनको ज्यादा हिम्मत दिखता है, अरे इतना हिम्मत है। और हमारा भक्त लोग बाहर जाएगा कभी, ब्रह्मचारी दूसरा भक्त जैसे, तो माला लेके बाहर नहीं घूमेगा, डर लगेगा, है ना, नहीं नहीं थोड़ा कोई गोरे गांव में देख लेगा तो फिर लेकिन ये जो गलत काम करने वाले हैं चोर डाकू, ये डरते नहीं है। तो इनसे भी हम ये सीख सकते हैं कि डरना क्यों। तो पूतना डर नहीं रहा, हिम्मत देखिए पूतना का, बोलती है यशोदा को, तुम दूध नहीं पिलाती हो क्या बच्चे को, कितना कमजोर हो गया है बच्चा। यशोदा के मन में विचार आया कि मैं तो इसकी मां हूं ही नहीं कृष्ण की, लगता है यही असली मां है इसकी। इन्हें उसकी ममता देख के पूतना की बच्चे के प्रति, यशोदा सोच रही है कि क्या मैं असली मां हूं, मेरे हृदय में तो इतना प्रेम नहीं कृष्ण के लिए, इसके हृदय में इतना प्रेम है, यही तो असली मां नहीं है, ऐसा भाव आ रहा है। तो अब बोल दी, दूध नहीं पिलाती हो क्या, मतलब मैं पिलाऊंगी। इसने भी अच्छा अपना फील्डिंग बैठा दिया कि मैं दूध पिलाऊंगी, पूतना बोल रही है। तो आगे भगवान पता पड़ेगा क्या क्या पी जाएंगे। यहां पे कहते हैं कि क्यों नहीं रोका सुखदेव को, पिछले अंदर जब घुस रही है तो प्रश्न उठ सकता है ना, यशोदा ने क्यों नहीं रोका, रोहिणी ने क्यों नहीं रोका, ऐसे छोटे बच्चे को कोई मां थोड़ी किसी के हाथ में दे देती है। तो यहां पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वह एक मुलायम मयान में रखी हुई तीक्ष्ण तलवार जैसे है। अब अगर आपके सामने तलवार हो, चलो मयान में नहीं भी रखी हो बाहर भी रखी हो, एक तरफ मयान रखा हुआ है एक तरफ तलवार रखी है, आप किसकी तरफ जाएंगे, मयान की तरफ, क्योंकि वो सुंदर है, डेकोरेटेड है, ऐसा ही नहीं कि वो लोहे की पट्टी में डाल देते हैं। राजा लोग का जो तलवार होता है बड़ा सुंदर डेकोरेटेड होता है, गोल्ड उसमें लगा रहता है, मोती हीरे रत्न जड़े होते हैं, ऐसे ही थोड़ी तलवार होती। तो ये बाहर से कैसी है, अंदर तो तलवार थी लेकिन बाहर से क्या रूप लेके आई थी, तो उससे मोहित हो गए थे सुखदेव गोस्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है। तो इसके बहुत सारे अर्थ किए जा सकते हैं। प्रहलाद अपना चाणक्य पंडित भी कहते हैं ना, रूपवती भार्या शत्रुहु, सुंदर अगर पत्नी है आपकी तो वो आपकी शत्रु है। क्योंकि जीव अपनी साधना भक्ति से भटक जाता है, मार्ग से भटक जाता है बाह्य सुंदरता को देख के। जैसे यहां पे रोहिणी और यशोदा रोक नहीं पाई, वैसे ही साधना भक्ति करने वाला जीव भटक जाता है कोई भी सुंदर स्त्री को देख के। और इसीलिए घातक क्या है, मतलब घातक यही है कि आपका भक्ति चला जाता है, रुक जाता है। पहले कम होता था कि स्त्री को देख के उसके साथ विवाह करना, नहीं, स्त्री के गुणों को देखा जाता था। इवन स्वयंवर भी होता था, माता सीता का जब स्वयंवर हुआ तो अनाउंस हुआ, लंबी लिस्ट अनाउंस हुई सीता के गुणों के बारे में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के गुणों के गुणों से विवाह करना चाहिए। क्योंकि रूप तो टेम्पररी है। जब नारद मुनि ने गुणगान किया द्वारकाधीश कृष्ण का भीष्मक के दरबार में, तो रुक्मणी जी सुन रही थी, सिर्फ सुना कृष्ण के गुणों को और प्रेम हो गया, गुणों से प्रेम हुआ। हालांकि कृष्ण तो हमेशा ही सुंदर हैं, लेकिन हमको शिक्षा मिलती है कि गुणों से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि गुण रहते हैं व्यक्ति के, उम्र ढलने के बाद भी गुण रहते हैं। अगर वो अच्छे राह पे है, भक्ति मार्ग पे है, तो गुण उसके निखर के आते हैं और अवगुण दबते जाते हैं। लेकिन सुंदरता, आप भक्ति करो कुछ भी करो, वो तो खत्म ही होना है, शरीर भौतिक शरीर है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती और जो भौतिक चीजें हैं वो कभी टिक नहीं सकती। तो इसीलिए यहां पे भी शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं कि बाह्य रूप किसी का नहीं देखना चाहिए। तो इसको बहुत सारे एंगल से हम समझ सकते हैं। किसी भी, जैसे कई बार क्या होता है, एक भक्त है, दो भक्त हैं, एक भक्त दूसरे को देख रहा है, अरे कितना अच्छा कीर्तन करता है, कितना अच्छा नाचता है, कितना अच्छा क्लास देता है, ये भी है, ये एक प्रेरणा है। एक प्रेरणा ये है कि कितना अच्छा जप करता है, सिंसियरली जप करता है, अच्छा व्यवहार है, ये प्रेरणा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बाह्य चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, और डिसाइपल्स कोर्स में सिखाते हैं ये कितना फेमस है, ये कितना पॉपुलर है, अरे ये भक्त कितना फेमस है, इसके साथ मैं कनेक्ट होना चाहता हूं। अरे ये जो फेम है ये तो कर्म के अनुसार आया है। हालांकि भक्तों में गुण होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन एक उदाहरण दे रही है कि बाह्य चीज से मत आकर्षित होइए। तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि कोई भी जगह पे हमें बाहरी चीज से आकर्षित नहीं होना चाहिए, अंदर क्या है वो देखना चाहिए। और वही माता यशोदा और माता रोहिणी नहीं देख पाई योग माया शक्ति के कारण, कि पूतना कौन है। एक बार पूछ तो लेते कि कौन है, कहां से आई है, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड तो नहीं होगा, आधार कार्ड तो दिखाओ, सैलरी अकाउंट नहीं था तो पैन कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड दिखाओ, कुछ तो आइडेंटिटी कार्ड चेक करना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर क्या है। और संसार में यही चल रहा है आज। सूर्पनखा भी बड़ी सुंदर रूप लेके गई थी राम के पास, लेकिन राम नहीं मोहित हुए, राम मोहित नहीं हुए। जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं तो कुब्जा मिलती है, बड़ा कुरूप शरीर, कुब्जन कुबड़ निकला होता है, लेकिन उसको बोलते हैं हे सुंदरी, बुरा मान जाती है कि मजाक उड़ा रहे हैं, और भगवान उसका कुबड़ हटा देते हैं, सुंदर बना देते हैं। क्योंकि भगवान क्या देख रहे हैं, उसके आत्मा को देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं क्या है, गुण क्या है। भले कुबड़ी थी लेकिन अपने स्वामी, भले उसका स्वामी कम से था लेकिन सेवा तो कर रही थी अच्छे से, ईमानदारी से। और भगवान को सिर्फ चंदन लगा दिया, उधर हो गया उसका। तो उसके मन को समझना चाहिए। और आजकल हम संसार में देखते हैं यही सब चल रहा है, क्योंकि कॉलेज में प्रचार करते कई बार स्टूडेंट मिलते हैं, प्रभु जी मैं दो माला जप करता है, एक दो माला जप करने पर बोलता नहीं प्रभु जी मैं भुला नहीं पा रहा हूं। क्यों भाई, उसका चेहरा बार बार दिखता है जब मैं आंख बंद करता हूं। अच्छा, उसका कोई गुण दिखता है तुमको? गुण तो पता नहीं, देखा नहीं कभी। अरे उम्र के साथ चेहरा बदल जाएगा भाई, लेकिन हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जिंदाबाद, वही पूरा माया का बाह्य रूप, सिर्फ स्त्री के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। या बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखे, बड़ी बड़ी कार देखे, आप किसी के घर जा रहे हो उसको प्रचार करने, बड़ा व्यक्ति है, उसका घर देखा, कितना बड़ा हॉल है, कितना सुंदर झूमर लगा के रखा है, कितनी सुंदर पेंटिंग्स है, दीवारें हैं, कितना पैसा है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। फिर बाह्य दृष्टि से फंस गए, फिर फंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फंसते हैं। साधु का परीक्षा तो होगा ना हर जगह। ये भी आप ये नहीं देख रहे कि वो कितना मेहनत कर रहा है, उसके हृदय में आप खुद सोचिए, वो इतना पैसे वाला व्यक्ति है और उसके पास सब फैसिलिटी है, फिर भी वो आपके पास आता है, प्रभु जी कुछ बताइए, दो शब्द सुनाइए। क्यों? क्योंकि उसका हृदय खाली है, उसके हृदय में दावाग्नि जल रही है। साधु के वचनों से वो ठंडा करना चाहता है अपने हृदय की दावाग्नि। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको दो वचन सुनाता हूं, आप मेरे लिए ऐसा दो बंगला बना दीजिए। तो ये बाह्य देख रहे हैं हम लोग। कई बार जाएंगे, पहले तो हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो, लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल इतने सुंदर, इतना क्लीन, ऐसा लगेगा आलीशान। कभी कभी भक्तों को लगता है प्रभु जी दो चार दिन और ही रुक जाता हूं, अरे हॉस्पिटल है ये, नहीं नहीं कितना अच्छा फैसिलिटी है इधर, रिमोट दबाओ तो पलंग ऊपर नीचे जाता है, तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ पहुंच के मिलता है। उधर तो मंदिर में प्लेट लेके जाओ खाना खाने के लिए, इधर तो पहुंच के सब मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। तो ये कई बार हम वो देखते हैं, या कोई फिल्म स्टार है उसका कितना सक्सेस है, लेकिन अंदर उसका जीवन क्या है, दुखी है, अंदर से दुखी है वो देख ही रहे हैं आजकल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अभी कोई बताया कल कि फिर किसी ने सुसाइड किया, 30 साल का एक फिल्म स्टार साउथ इंडिया में। अरे 30 साल का है, तुम्हारा फिल्म अभी रिलीज होने वाला है, एक्टिंग कर लिया है, पता नहीं क्या है उसके जीवन में इतना दुख की सुसाइड कर दे। ये फैशन बन गया है, क्योंकि लोग जो बाह्य चमक धमक है ना, इससे आकर्षित हो गए। अंग्रेजी में कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमचमाती है वो सोना नहीं होता है, हर चीज जो चमचमाती है वो सोना नहीं होता, सोना अपने गुणों से पहचाना जाता है, सिर्फ चमचमाहट से नहीं। अगर सिर्फ चमकना है तो आजकल वो 5 रुपए में वो आता है ना प्लास्टिक जैसा कुछ शीट पैकिंग करते हैं हम लोग, बुक पे कवर लगाते हैं उसमें गोल्डन कलर का आता है, डेकोरेट करते हैं तो 5 रुपए में इतना बड़ा शीट मिल जाता है, इसको पूरा माइक को कवर करेंगे तो सोने का थोड़ी हो जाएगा, इसका गुण है क्या सोने का? कांच को देख के आप हीरा समझेंगे तो हीरे का गुण है क्या? इसलिए हमको गुण देखना चाहिए किसी भी जगह पर। और वहीं कोई व्यक्ति बहुत बाह्य दृष्टि से बड़ा कुरूप हो सकता है या दुर्व्यवहार भी कर सकता है, लेकिन अंदर से हो सकता है अच्छा हो, तो साधु उस पर भी कृपा करें। जैसे भगवान ने पूतना पे कृपा किया, भगवान पूतना की सुंदरता छोड़ो वो तो उसके भाव को भी समझ गए, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि इसमें कुछ है क्या कि इसका उद्धार करूं, तो वैसे ही वैष्णव भी होते हैं, कुछ है क्या इसके अंदर गुण कि इसका उद्धार किया जाए, नहीं है तो महाप्रसाद खिला के इसका गुण डेवलप करते हैं। तो दोनों ही, एक तरफ से हमको चमक धमक से नहीं अट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरे तरफ से मान लो आपको 2 घर में इनविटेशन है कीर्तन करने के लिए, एक घर का मालिक जो है वो आपके लिए जैगुआर गाड़ी भिजवाता है, तो गाड़ी देख के भी समझ में आ जाता है आपको, तो हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए। दूसरा है बोलता है प्रभु जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, मंदिर का गाड़ी है या फिर ऑटो में, या तो 5 मिनट ये पैदल चल के आ जाइए, हमारा छोटा सा रोहिया पार्क में घर है, तो दोनों में देखिए कि गुण किसका है, भगवान का भक्त कौन है, है ना? वो भजन है ना, दुर्योधन को भोग न खायो, सुख साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जब भगवान गए थे शांति दूत बन के, तो दुर्योधन ने जो अरेंजमेंट किया था वो अपने महल में नहीं किया था, दुशासन के महल में किया था, क्योंकि दुर्योधन ने अपने से अच्छा महल बना के दिया था छोटे भाई को दुशासन को, और जो आयोजन हुआ था 56 भोग का आप सोच नहीं सकते भाई, अभी तो टेम्पररी सही लेकिन पूरे पृथ्वी का राजा ही है ना दुर्योधन, तो कैसा आयोजन किया होगा अपने समधी के लिए, और वो भी जब उससे फायदा उठाना है तो भगवान नहीं गया। विदुर के घर विदुरानी छिलके खिला रही है, वो प्रेम से खा रहे हैं, इतना आयोजन सब ठुकरा दिए। दुर्योधन पूछा था कि वासुदेव आप आए क्यों नहीं मेरे पास, हमने तो आपको न्योता दिया था। भगवान कहते हैं न्योता उसका स्वीकार किया जाता है दुर्योधन, 2 ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, 2 परिस्थिति होनी चाहिए जब आप किसी के घर जाओ, या तो आप भूखे हो और मैं भूखा हूं नहीं, है ना, मैं तृप्त रहता हूं, आत्मा राम है, भगवान क्यों भूख लगेगी। दूसरा उससे प्रेम होना चाहिए जो तुमसे है नहीं, और ना तुम्हारा हमसे प्रेम है, तो फिर तुम्हारे घर आके क्या करूंगा मैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो जाके उसको भक्ति देना चाहते हैं, हमको तो दुर्योधन भी बुलाएगा तो हम थोड़ा प्रसाद खिलाएंगे, हाँ लीजिए दुर्योधन प्रभु थोड़ा प्रसाद खाइए, उसका भी उद्धार करेंगे। प्रभुपाद जी यहां पे कोट करते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, लोग समझ नहीं रहे कि हमारा टारगेट हमारा गोल क्या है, विष्णु है। बाह्य रूप से ये जो बाह्य माया की चमक धमक से आकर्षित न हो जाएं हम, स्पेशली माया का चमक धमक माया किसको दिखाएगी, जो फंसे हुए उनको क्या दिखाएगी, और जो उद्धार हो गया उनको तो कुछ कर ही नहीं सकती माया, तो बचे कौन, हम लोग। जो अभी जैसे ट्रेन है ना जब गुफा में जाती है, टनल में, थाने में है टनल, अगर मान लीजिए वो 4 किलोमीटर का टनल है और ट्रेन तो आधा किलोमीटर होती है, और ट्रेन अंदर जाके बीच में बंद हो जाए, न इधर इधर भी उजाला नहीं दिखता है, इधर भी उजाला नहीं दिखता है, तो जो इधर है वो तो ठीक है, जो इधर है वो भी ठीक है, फंसे कौन हम बीच में। जो भक्त बनने का प्रयास, जो साधक है, तो माया की चमक धमक सबसे ज्यादा दिखाई जाएगी और परेशान करेगी किसको, साधक को। इसलिए हमको ज्यादा बचने की आवश्यकता है। तो अगर अंधेरे टनल में आप फंस जाएं, ट्रेन की लाइट बंद हो जाए, वो टनल में भी लाइट नहीं है, तो क्या करोगे सबसे पहले? अंधेरा हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हम लोग, मोबाइल उठाते हैं और लाइट चालू करते हैं, सबसे पहले लाइट चालू करते हैं, प्रकाश। और प्रकाश क्या है? ये प्रकाश है श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने छपाया भगवद गीता में भी एक फोटो है ना, कि एक ऐसे भक्त साधु लेके खड़ा हुआ है श्रीमद् भागवतम, और प्रकाश हो रहा है पूरे विश्व में। और बैक टू गॉडहेड में भी ऐसे ही से प्रकाश निकल रहा है। तो ये प्रकाश है। किसी ने बड़ा एक सुंदर फोटो भेजा, ये लास्ट पॉइंट बताते हैं, एक फोटो भेजा, उसमें तीन पार्ट है, एक व्यक्ति है और खड़ा है और पूरा अंधेरा है, दूसरी पिक्चर में दूसरे पार्ट में वो व्यक्ति ऐसा बुक पढ़ रहा है और बुक से वो प्रकाश निकल रहा है बहुत सारा, और तीसरे, इसको बाद में लगा देना, तीसरे पिक्चर में वो बुक को ऐसे रख लेता है, अब प्रकाश कहां पे है, अब प्रकाश उसके चेहरे से बाहर निकल रहा है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ये प्रभुपाद पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर प्रकाश आएगा, और इसके बाद मान लो जब प्रचार करने जाएंगे तो हमारे अंदर से प्रकाश निकलेगा जो दूसरों को प्रकाश देके उनका उद्धार करेगा। तो जैसे आप लाइट चालू करोगे अंधेरा होते ही, वैसे ही हमारे जीवन में अंधेरा है, अभी थोड़ा सा लाइट आया है तो लाइट को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा श्रवण करके, ज्यादा कीर्तन करके, ज्यादा रीडिंग करके, ज्यादा क्लास अटेंड करके, ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत से हमको संपर्क में रहना चाहिए, शास्त्रों से, तो वो हमको प्रकाशित करेंगे, हमको प्रकाश देंगे, तब अंधेरे में नहीं फंसेंगे। और जब अंधेरे में नहीं फंसेंगे तो डिसीजन लेना बड़ा आसान होगा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, एक रास्ता इधर जाता है एक रास्ता बाहर जाता है। अंधेरे में हम उधर चले जाएंगे गलती से तो बाहर हो जाएंगे, और अगर हमारे पास लाइट होगा, वो कोयले की खदान में होता है ना, वो टोपी पहनते और उनके यहाँ टोपी पे लाइट लगी रहती है, देखा इंजीनियर लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में भी अंडरग्राउंड काम करते हैं, टोपी में लाइट लगी रहती है। तो ऐसा इधर लाइट लगाओ भागवत का, अब फिर दृष्टि क्लियर होगा, फिर आपको पता पड़ेगा कि अरे वो तो बाहर का रास्ता है, इधर आना है, ये कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। तब हम मोहित नहीं होंगे, माया मोहित नहीं होंगे, जब ये रेगुलर हम लोग अपना बैटरी को चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमने क्या देखा कि भगवान ने क्यों आंखें बंद की, वो देखा, अलग अलग कारण, और कैसे पूतना आई है फिर भी माताएं नहीं समझ पाई, कारण यह था कि बाह्य रूप से बड़ी सुंदर बन के आई थी पूतना, तलवार की मयान ज्यादा सुंदर है, तो तैयार जो तलवार घातक है उसको नहीं देख पाई। और हम भी ऐसे माया मोहित हो जाते हैं, और कैसे बच सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान से। गीता में श्लोक है ना, तेषाम एवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमः, जो अंधेरा जमा हुआ है, क्या है, नाश्यामि आत्मभावस्तो, नाश्यामि आत्मभावस्तो, मैं नाश करूंगा ना अंधेरे में, अंधेरे को कैसे, ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञान के दीप से कृष्ण बोलते हैं। तो अंधेरा जो अज्ञानता है उसको दूर कौन करेगा, ज्ञान। और महारानी कुंती बत्ती अपने प्रार्थनाओं में कि जीव का जो बंधन है उसका कारण क्या है, अविद्या कर्म, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम और कर्म, अविद्या के कारण उसके हृदय में काम उत्पन्न होता है और काम के कारण वो विकर्म करता है। तो जब अविद्या ही नहीं होगी तो काम नहीं होगा, कर्म नहीं, विकर्म नहीं करेंगे, तो अविद्या को नष्ट कर दीजिए, वही ये मार्ग है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।